ओम शांति। ये 5-7-68 की बाबा के समय की चलाई गई पुरानी वाणी। बाप बैठ यहाँ समझाते हैं, जबकि शरीर पर सवार बच्चे जानते हैं कि बाप इस रथ द्वारा ही अपना परिचय देते हैं। अब यहाँ पर बताया कि षष्ठ चक्र का ज्ञान भी देते हैं। षष्ठ चक्र का ज्ञान सिर्फ इतना ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम युग फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग नहीं, षष्ठ चक्र का ज्ञान माना हर एक आत्मा के चारों युगों की पूरी हिस्ट्री, जन्म जन्मांतर की बाप आकर के उस वाणी में भरी हुई रखी है। अब बच्चे उसका हिसाब लगाते जाएं और एक एक आत्मा के हिसाब किताब निकालते जाएं मनन चिंतन मंथन के द्वारा। क्या बच्चों ने जितना अपने को बिंदु रूप में स्थित किया होगा आत्म की स्थिति में, उतना आत्मा सूक्ष्म बनती जाएगी। सूक्ष्म आत्मा बनने से रिजल्ट क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा? बुद्धि सूक्ष्म बन जाने से एक एक जन्म की गहराई को पहचान सकेगी। पहले पहचानेंगे अपने परमात्मा बाप को। क्या बेसिक नॉलेज में हमें तो यही परिचय दिया है ना, बाप कौन, बिंदु। क्या परिचय दिया, बाप कौन, बिंदु। हमारा बेहद का बाप बिंदु सुप्रीम सोल, यही तो परिचय दिया, इससे आगे तो कोई परिचय नहीं दिया। लेकिन इससे परिचय पूरा नहीं होता, इससे सिर्फ इतना हुआ कि बिंदु को याद करने से हमारी बुद्धि सूक्ष्म इतनी बन गई कि हम उस बाप को जो कि साकार सृष्टि पर प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहा है मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए, उसको हम पहचान सके। इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है। उनकी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं हो जाती जिन्होंने ब्रह्मा बाबा देहधारी को याद किया। क्या कहा, देह को याद करने से बुद्धि में मिट्टी याद आएगी, मिट्टी याद आने से मिट्टी बुद्धि बनेगी या सूक्ष्म बुद्धि बनेगी? मिट्टी बुद्धि बन जाती। तो मिट्टी बुद्धि जो मिट्टी को याद करती रही, मुरली में तो मना किया बाबा ने, क्या मना किया कि ब्रह्मा बाबा का चित्र भी नहीं रखना, अगर रखेंगे तो वही चेहरा मोड़ा वही शरीर याद आता रहेगा, गोरा चिट्ठा चिकना चोपड़ा लंबा चौड़ा शरीर याद आएगा और तुमको अच्छी याद शिव बाबा की नहीं आएगी। तो विविचारी याद हो जाने से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उससे क्या होगा, बाप का असली परिचय तुम प्राप्त नहीं कर सकोगे और माँ को तो पहचान ही नहीं सकोगे। माँ बाप की अगर असली पहचान करनी है, जो नई सृष्टि का रचयिता है, नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने वाला है, जिसके लिए मुरली में बोल दिया मैं राजधानी स्थापन करके जाता हूँ, और धर्म पिताएं राजधानी स्थापन करके नहीं जाते, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके जाते हैं, और मैं क्या करके जाता हूँ, मैं राजधानी स्थापन करके दिल्ली में जाऊंगा आज सनातन देवी देवता धर्म की, उसके बाद सब धर्मों का विनाश भी करके जाऊंगा। क्या और धर्म पिताएं पिछले धर्म भी चलते रहते हैं, जैसे क्राइस्ट आए, क्राइस्ट से पहले इब्राहिम का इस्लाम धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म चल रहा था, वो भी चलते रहे और उन्होंने अपना क्रिश्चियन धर्म भी स्थापन कर दिया। लेकिन सुप्रीम सोल क्या करता है, सुप्रीम सोल पुराने सब धर्मों का विनाश कराए देता है। क्या एक घड़ा दूध रखा हो और उसमें एक बूंद भी अगर बिस्की रह डाल दी जाए तो क्या हो जाएगा, सारा ही विष हो जाएगा। तो ऐसे ही इस दुनिया में एक एक मनुष्य आत्मा की बुद्धि में अगर थोड़ी भी मनमत या परमत भरी हुई है, एक बाप के सिवा, एक शिव बाबा की श्रीमत के अलावा, तो वो नरक ही बनाएगी, स्वर्ग नहीं बना सकती। एक की मत से सदगति और अनेक की मत से दुर्गति होती, एक की मत से सतयुग स्थापन होगा और अनेकों की मत से कलह कलेश वाला कलयुग स्थापन होगा। तो एक शिव बाबा में ही ये ताकत है, उसकी दृष्टि में ही इतनी पावर है कि दृष्टि से सारी सृष्टि को चेंज करके जाता है। एक एक मनुष्य आत्मा में से कोई भी ऐसी नहीं बचेगी जो सुप्रीम सोल बाप के प्रैक्टिकल साकार पार्ट को न पहचाने और पहचाने बिगर वापस परम धाम चली जाए। क्या लास्ट में जब दुनिया का एटमिक विनाश होगा, सारी दुनिया खलास होने वाली होगी, उस समय ये स्टेज होगी कि जो लास्ट में आने वाली आत्मा है एक जन्म लेने वाली, वो भी पहचान लेंगी उस बाप को, पहचान लेंगी और पहचान करके फिर वापस जाएंगी पीछे पीछे। पहचानेंगी नहीं तो वापस कैसे जाएंगी? पहचानेंगी, वो पहचानने का तरीका सबका अलग अलग होगा। कोई तो इतने क्लोज कॉन्टेक्ट वाले होंगे, तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग सुनूं, तुम संग श्वास और श्वास साथ निभाऊं, बोला है ना मुरली में, तो वो क्लोज कॉन्टेक्ट का भी पार्ट निभाएंगी। और कुछ ऐसी होंगी कानों से ही सुन लेंगी रेडियो में आवाज को, आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो टेलीविजन आज तो घर घर में चल पड़ा है, उनकी संख्या बहुत हो जाएगी, वो टेलीविजन में देखेंगे भी कि इसका रूप स्वरूप बाप का ऐसा है, वो एडम का, वो आदम का, वो आदिदेव का, तुम्हारा आदिदेव है भी, जो शास्त्रों में कहा गया है शंकर के लिए तुम्हारा आदिदेव है, ये वाणी बोली गई है ना, तो उसको देखेंगे टीवी में, उसकी वाणी भी सुनेंगे, उसके ज्ञान की गहराइयों को भी सुनेंगे, इस तरह उनका मिलन हो जाएगा। कुछ ऐसे होंगे कि माउंट आबू तक पहुंच करके भी सन्मुख बैठ करके वाणी सुनेंगे। बाबा ने बोला जो मेरे सन्मुख आकर के सुनते हैं वो 9 लाख में आ जाएंगे। क्या 9 लाख ऐसे हैं जिनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी को कुछ न कुछ कम हो जाता है। एक जन्म किसी का, 2 जन्म किसी के, 4 जन्म किसी के, 8 जन्म किसी के, 83 जन्म कम हो जाएंगे। एक जन्म की मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। तो बाप जो है वो बाप के रूप में बीजारोपण आज ने किया, माता के रूप में उसने 68 जनवरी तक ज्ञान का दूध पिलाया, बच्चों को पालना की, प्यार दिया, और 76 से बाप प्रत्यक्ष होकर के बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मानसिक वर्षा देना शुरू करता है। क्या मुक्ति, जीवन मुक्ति पहले मन के, बुद्धि के अंदर मिलेगी, आत्मा के अंदर मिलेगी, या पहले प्रैक्टिकल में स्थूल में मिल जाएगी? पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा ये अनुभव करे कि हम दुख दर्दों से हमारी आत्मा दूर हो गई, अनुभव करने लगी। कोई कितना भी दुख देने की बात करता है, कितना भी मारपीट करता है, क्या रविंद्र भाई को पुलिस ने नंगा करके बड़ी बुरी तरह से पिटाई की, वो अपने धर्म से हिल गया क्या है? ज्ञान छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ करके भाग गया क्या? ऐसी स्थिति आ जाए कि आत्मा जो है दुख मिल रहा है लेकिन दुख को दुख न समझे, ऐसी स्टेज में पहुंच जाए, तो अब ये बात दूसरी है। कोई थोड़े समय के लिए अनुभव करे, कोई लगातार अनुभव करे। क्या एक होता है थोड़े समय अल्पकाल के लिए अनुभव करना, जैसे भगत सिंह, भगत सिंह ने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने क्या किया, दीवार में चिनवा दिया गया और वो हंसते हंसते दीवार में चिना दिए गए, आह नहीं निकली। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, तो अल्पकाल के लिए उन्होंने सुख और शांति का अनुभव किया मरते समय। अंत मते तो गति क्या होगी, अच्छा ही जन्म मिलेगा ना, खराब जन्म थोड़ी मिलेगा। लेकिन वो तो हद की बात थी, हमको किस स्टेज तक पहुंचना है, अल्पकाल की स्टेज तक नहीं पहुंचना है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, ये अंत समय की यादगार है, अभी की यादगार नहीं है। अभी तो थोड़े समय के लिए हम खुश हो जाएंगे, प्रसन्नता अनुभव कर लेंगे, बाद में फिर दुखी भी अनुभव करने लगते हैं, चिल्लाने बिल्लाने लगते हैं, क्रोध आ जाता है। जब तक ये चल रहा है पांच विकारों का अटैक, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि हम जीवन मुक्ति या मुक्ति की स्टेज में। लेकिन ऐसी स्टेज को हमें धारण करना है भविष्य में, ये हमारा लक्ष्य है। तो वो बाप वो वर्षा देने के लिए अभी सृष्टि पर आया हुआ है, उसका परिचय दिया कि रथ द्वारा ही अपना परिचय देते हैं और चक्र का ज्ञान भी देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, क्या कहा, तुम यहाँ बैठे हो, देखते हो रथ पर बाप विराजमान है। क्या देखते हो, ब्रह्मा के रथ में, माता के रथ में बाप सुप्रीम सोल विराजमान है। इस बाप ने ही सारी चक्र का राज समझाया, समझाने वाला कौन है, ओ सुप्रीम सोल बाप। बुद्धि ब्रह्मा की तरफ गई कि इस बाप ने समझाने वाला है, तो फेल हो गए, मन बुद्धि में बात असली नहीं बैठी। इस बाप ने ही सारी सृष्टि चक्र का राज समझाया है, इस बाप ने माने किसकी तरफ इशारा किया, सुप्रीम सोल बाप ने ही सारी सृष्टि चक्र का राज समझाया है। बाप सन्मुख बैठे हैं, संगम युग में ही बाप सन्मुख होता है, और कोई युग नहीं है जिसमें बाप सन्मुख हो। तो क्या आर्थर से हम बच्चों के सामने सन्मुख नहीं है, क्या मतलब हुआ, 68 के बाद जो बच्चे ज्ञान में आ रहे हैं वो सन्मुख लेकर के ज्ञान नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं लेकिन उनको पता, ये हो सकता है उनको पता ना हो। बाप सन्मुख बैठे हैं, हम बाप को याद करते हैं, क्या कहा, जो बाप सन्मुख बैठे हैं उस बाप को हम बच्चे याद करते हैं, तो बाप भी बच्चों को याद करते हैं। जो बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप भी बच्चों को याद करते हैं। जो मददगार बनते हैं उनको, सबको नहीं याद करते हैं, क्या कहा, जो बाप के कार्य में, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में, राजधानी की स्थापना के कार्य में, सब धर्मों के विनाश के कार्य में जो बाप के मददगार बनते हैं, उन बच्चों को वो सुप्रीम सोल बाप भी याद करता है। सारी दुनिया उस भगवान को याद करती है, और भगवान किन बच्चों को याद करता है, जो उसके मददगार बनते हैं, भुजाएं बनते हैं। कितने बच्चे होंगे हैं? हाँ, वो बच्चे कितने होंगे जिनको बाप याद करते हैं, भुजाएं कितनी होंगी है, नौ लाख भुजाएं नहीं होती, भुजाएं कहीं नौ लाख दिखाई गई, कहीं ब्रह्मा की हजार भुजाएं दिखाई जाती है, कितनी भुजाएं दिखाई जाती, हजार भुजाएं माने 500 लेफ्टिस्ट और 500 राइटिस्ट, राइटियस रूप में सहयोग करने वाली और 500 लेफ्टिस्ट रूप में सहयोग करने वाली, विनाश का कार्य करेंगे जो लेफ्टिस्ट रूप हो गया, क्योंकि इम्पियरिटीज होता है विनाश, और प्योरिटी होती है स्थापना। तो जिन्होंने ब्रह्मा की तरह प्योरिटी का रूप धारण करके बाबा के यज्ञ में राजधानी स्थापना करने का कार्य किया वो राइटियस भुजाएं हो गई। तो हजार भुजाओं को बाप याद करता है सुप्रीम सोल, कितनी बड़ी बात हो गई। बाप याद करते हैं तो बाप भी बच्चों को याद करते हैं जो मददगार बनते हैं उनको। अच्छा अभी तो बाप सन्मुख है, क्या कहा, अभी तो बाप सन्मुख है, भले माँ के रूप में है लेकिन सन्मुख तो है। अच्छा समझो जैसे मम्मा बैठती थी कहती थी बाप को याद करो, या यहाँ भाई बैठते हैं, क्या मम्मा बैठती थी कहती थी बाप को याद करो या यहाँ भाई बैठते हैं। भाई बहन की अर्थात फीमेल के रूप में बैठा है ये बुद्धि में रहता है, तो तुम किस प्रकार याद करते हो? अरे ब्रह्मा के तन में बैठा है, माँ के रूप में पार्ट बजा रहा है, तन पुरुष का है, तन पुरुष का। बाबा ने बड़ी गहराई से ये बात समझाई कि तुम किस रूप में याद करते हो, किस प्रकार याद करते हो। माँ के रूप में याद करते हो, जो बाप का असली रूप है उस रूप में याद करते हो, या मम्मा वो भी तो थी ना 65 से पहले, किस रूप में याद करते हो, किसको और कैसे याद करते हो, सो बताओ किसको याद करते हो और कैसे याद करते हो। माने माँ के ही रूप में याद करते हो या बाप का जो असली रूप है उसमें भी याद करते हो? बाप का असली रूप ऐसे उस समय था ही नहीं तो असली रूप में कहाँ से याद करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम सोल बाप था वो ब्रह्मा के तन में माँ के रूप में पार्ट बजा रहा था, माँ के रूप में बच्चे याद करते थे, लेकिन जो सुप्रीम सोल बाप का प्रैक्टिकल रूप है वो उस समय मौजूद नहीं था। या फिर बिंदु के रूप में याद करते थे, किस रूप में याद करते थे? कोई तो ब्रह्मा के तन में याद करते थे और कोई बिंदु को याद करते थे। तो पूछा तुम किस प्रकार याद करते हो, किसको याद करते हो और कैसे याद करते हो। बुद्धि बुद्धि में ये बात आनी चाहिए कि हम कैसे याद करते हैं और किसको याद करते हैं। बुद्धि ऊपर चली जाती है या जिस रथ में शिव बाबा आते हैं उनको याद करते थे। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है या जिस रथ में बाबा आते हैं उनको याद करते थे, या समझते थे बाबा परमधाम में रहते हैं, कैसे याद करते थे? हैं तो सब तरह से याद करने वाले बच्चे, या बाबा को परमधाम में याद करते थे, अभी इस रथ पर आने वाला है इस रूप में याद करते थे। उस समय क्या क्या याद करते हो, प्रश्न डाल दिया, अनुभव बताओ। अथवा अपने घर में जाते हो तो जाते जाते कैसे याद करते हो बाबा को? बाप को याद करते हो तो बाबा को ऊपर में याद करते हो या इस रथ को याद करते हो? अर्थात बाप दादा दोनों को याद करते हो, बाप माने सुप्रीम सोल, दादा माना ब्रह्मा का, दादा लेखराज का तन, दोनों को याद करते हो, बाप दादा को याद करते हो, बताओ। यह तो है बेहद का बाप, सुप्रीम सोल है कैसा बाप, बेहद का बाप। यह तो है माना ब्रह्मा की तरफ नहीं इशारा किया, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा तो 68 में ही सही छोड़ दिया, सारी दुनिया ने उनको पहचाना, पहचाना नहीं, जाना नहीं, वो पहले ही सही छोड़ गए, तो उनको बेहद का बाप नहीं कह सकते। यह तो यहाँ बैठे भी सारे विश्व को याद करते हैं। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल के लिए बोला कि यह तो यहाँ बैठे भी सारे विश्व को याद करते हैं, उसमें भी इन पार्टिकुलर और इन जनरल बात है, इन पार्टिकुलर और इन जनरल। पार्टिकुलर अर्थात जो सन्मुख हैं उनको याद करते हैं, क्या कहा, स्पेशल बात क्या है, जो सन्मुख हैं उनको याद करते हैं, उसमें भी जो जाति सर्विस करते हैं उस तरह बुद्धि चली जाती। जनरल तो सभी बच्चों को बाबा याद करते हैं, लेकिन पार्टिकुलर किन बच्चों को याद करते हैं, जो बाबा के विशेष सर्विसेबल मददगार बच्चे हैं उनको याद करते हैं, उनकी तरफ नजर जाती है, उनको अच्छी रीति देखते हैं। किनको? जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं उनको अच्छी रीति देखते हैं, प्यार करते हैं। क्या प्यार करने की भी बाबा ने रीति बताई, बाप का अंदर का प्यार और बाहर का प्यार की बड़ी भारी युक्ति है, ये भी देखना है। उनको अच्छी रीति देखते हैं, प्यार करते हैं, कोई कोई को तो ऐसे ही देख लेते हैं अंदर से प्यार, कोई कोई को तो ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ बैठे भी बुद्धि बेहद में चली जाती है, उसमें भी जो अच्छे अच्छे सर्वसेवल बच्चे हैं वो भी शिव बाबा को रथ सहित जरूर याद करेंगे। क्या कहा? क्या कौन बच्चे याद करेंगे? जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो शिव बाबा को रथ सहित जरूर याद करेंगे। हाँ जी, जो अच्छे अच्छे सर्वसेवल बच्चे हैं वो भी शिव बाबा को रथ सहित जरूर याद करेंगे। एक खास बात बता दी, जो अच्छे अच्छे हैं वो रथ सहित याद करेंगे, और जो अच्छे अच्छे नहीं हैं, गंदे गंदे हैं, वो सिर्फ बिंदु को याद करेंगे। क्या साबित हो गया कि जितने भी विधर्मी हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, भले अभी ब्राह्मण बच्चे हैं, क्या वो अच्छे बच्चे नहीं है, वो सिर्फ निराकार को बिंदु को याद करें। अच्छे अच्छे बच्चे जो देवता बनने वाले बच्चे हैं वो हैं जो उस निराकार को साकार में याद करते। रथ बिगड़ तो याद कर न सके अच्छे बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं बिगड़ रथ याद कर न सके, बाप भी याद करेंगे रथ सहित। बच्चों को बाप कैसे याद करेंगे, बिंदु को याद करेंगे क्या? ऐसे थोड़े कि इस बिंदु को याद किया, इस बिंदु को याद किया, इस बिंदु को याद किया, नहीं, बाप भी एक एक बच्चे को रथ सहित याद करेंगे। बाप याद करेंगे रथ सहित, फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है, वो भी बाप को याद कर बाप के लिए सर्विस करते हैं, इसलिए बाप भी कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेरे बच्चे हैं, एक जैसी सर्विस करने वाले सब नहीं है, चंद्रमा के नजदीक भी सितारे होते हैं। बाबा ने यह मिसाल दिया किसका, उस चंद्रमा का, लेकिन समझना क्या चाहिए, बाबा ने उस जड़ चंद्रमा की बात की है या चैतन्य चंद्रमा की बात की होगी? चैतन्य चंद्रमा कौन है, जिसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े भी प्यार ले लेते हैं, ज्ञान की रोशनी ले लेते हैं, वो कौन? ब्रह्मा। तो बोला चंद्रमा के नजदीक भी सितारे होते हैं। ऐसे ऐसे सितारे हैं जो चंद्रमा के नजदीक ही होते हैं। ये नहीं कहा ज्ञान सूर्य के नजदीक ही है। किसके नजदीक है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के नजदीक सितारे होते हैं, तो दूर दूर भी होते हैं। कोई सितारे चंद्रमा के नजदीक होते हैं, कोई सितारे चंद्रमा से बहुत दूर होते हैं। इसमें भल कोई कितना भी दूर हो फिर भी याद जरूर आवेगा। ये बच्चा विलायत में बहुत अच्छी सर्विस कर रहा है। क्या कहा? साकार तन से जो शिव बाबा का साकार रथ है उससे सर्विसेबल बच्चा कोई कितनी भी दूर हो, विलायत में ही रह करके क्यों ना सर्विस कर रहा हो, लेकिन बाबा को जरूर, भले बाबा माउंट आबू में बैठे हो या कहीं भी हो, बाबा को वो दूर बैठा बच्चा भी जरूर याद आवेगा। ये बच्चा विलायत में बहुत अच्छी सर्विस कर रहा है। फलाने की आत्मा गांव में अच्छी सर्विस कर रही है, बाबा क्या सोचेंगे? फलाने की आत्मा, जब फलाने कहा तो बिंदी याद आएगी या वो शरीरधारी याद आएगा? फलाना जब कहा जाएगा तो उसको शरीरधारी का नाम याद आएगा ना। फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। जो जो जैसी सर्विस करते हैं मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, वो याद आते हैं। क्या था? ऐसे नहीं जो भाग दौड़ की सर्विस कर रहे हैं वो ही बाबा को ज्यादा याद आते हैं, किचन में रोटी बनाते हैं वो ही ज्यादा बाबा को याद आते हैं। क्या बोला यहाँ? जो भी मनसा से या वाणी से भाषण वगैरह करके या कोर्स समझा करके सुनाते हैं, ज्ञान की सर्विस करते हैं, वो तो बाबा को याद आते हैं। कर्म में तो बहुत प्रकार की सर्विस आ जाती है। वाणी में तो सिर्फ बोलने की सर्विस है, लेकिन कर्मणा में बहुत प्रकार की सर्विस आ जाती है। कर्मणा सर्विस में ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कर्मणा में ही उनकी बुद्धि लगी हुई है। शिव बाबा की याद कर तो रहे यज्ञ की सेवा, लेकिन याद नहीं बैठी है, शिव बाबा की याद नहीं आ रही उस समय। ऐसे भी हैं जिनको शिव बाबा ही याद आता है कर्मणा सर्विस करते करते। ऐसे भी हैं जो दूसरों को याद कर रहे हैं, देहधारियों को। क्या? जिन देहधारियों के नजदीक रह रहे हैं या जिनके लिए खाना बना रहे हैं उनकी याद आती है और खाना बना रहे हैं यज्ञ का। ऐसे भी तो होंगे ना। तो भांति भांति के बच्चे हैं, बहुत प्रकार की कर्मणा सर्विस करने वाले हैं। स्थूल तन की और स्थूल धन की भी सेवा करने वाले। तो ये सभी बातें बाप ध्यान में रखते हैं। क्या कहा? बाप जब सर्वसुल बच्चों को याद करते हैं तो ऐसे नहीं सबको एक जैसा याद करते हैं, सारी बातें बुद्धि में याद रखते हैं। स्थूल तन की और धन की। कौन अटेंड कर रहे? तो ये सभी बातें बाप ध्यान में रखते हैं। ये बच्चा धन की बहुत मदद करते हैं, भल खुद इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं। क्या? कोई है धन से तो बहुत मदद कर देता है। हेलो सेंटर खोल दो है, हेलो प्रदर्शनी लगा लो, लेकिन खुद पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करते। तो उनको भी बाबा याद करते हैं, लेकिन थर्ड क्लास उनकी याद करेंगे या फर्स्ट क्लास याद करेंगे? तब तो थर्ड क्लास याद है, क्योंकि तन मन और लास्ट में आता है धन। तन की सेवा फर्स्ट, फिर मन सहित तन की सेवा, फिर धन की। बल खुद इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है परंतु उनके धन से बहुतों का कल्याण हो रहा है, उनका कल्याण अपना नहीं हो रहा है लेकिन धन से बहुतों का कल्याण हो रहा है। बल ज्ञान में नहीं है, क्या कहा, बल ज्ञान में भी नहीं है। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो ज्ञान में नहीं चलते हैं लेकिन यज्ञ में धन लगा रहे हैं। बल ज्ञान में नहीं है फिर भी सर्विस बहुत अच्छी करते हैं धन की, पैपे कार्ड खरीद के दे देंगे है, VCR खरीद के दे देंगे, BCP खरीद के दे देंगे, कोई मकान खरीद के दे देंगे, लेकिन खुद याद ज्ञान में नहीं चलते। बल ज्ञान नहीं है फिर भी सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। कोई ऐसे भी आते हैं कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, बाकी धन ले लीजिए, मुंह से ही कह देते हैं हमको इतनी फुर्सत नहीं है, तुम अच्छा काम कर रहे हो लो धन ले लो। इस धन से फिर बाबा यूनिवर्सिटी खोलेगा और क्या करेगा। अगर ऐसे लोगों का धन मिल जाता है तो बाबा क्या करेंगे, उस धन से यूनिवर्सिटी खोल लेंगे और क्या करेंगे। माना असली जो सेवा है वो धन से सेवा नहीं होती। क्या असली सेवा, कोई मान लो किसी ने मकान दे दिया, खुद पुरुषार्थ कुछ भी नहीं किया, तो मकान देने वाले के उस जगह पे मिनी मधुबन जैसे पवित्रता के लिए भी नालिश देते हैं। बाप को नालिश इसलिए देते हैं कि बच्चे पवित्रता को धारण करें, यही देवता जैसी स्थिति बननी बन जाए उनकी, प्योरिटी से यूनिटी बनाना शुरू कर दें। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकल विनाश होंगे। बाप अभी तो यहाँ रहवासी है ना, क्या कहा, कब याद करो, कब तक बाप को याद करो साकार तन में। जब तक बाप है यहाँ मौजूद तब तक बाप को साकार तन में याद करो, ये नहीं कि शरीर छोड़ जाए फिर भी उस तन में याद करते रहो। तो भक्ति मार्ग वालों में और ज्ञान मार्ग वालों में क्या अंतर है, अंतर रहा है? भक्ति मार्ग वाले भी यही कर रहे हैं, और राम का चित्र रख लिया राम को भगवान के रूप में याद कर रहे हैं, कृष्ण का चित्र रख लिया कृष्ण को भगवान के रूप में याद कर रहे हैं। अरे वो राम कृष्ण तो पहले हो चुके, चले गए, खत्म हो गए, अब उन शरीर छोड़ने वालों को याद करने से क्या फायदा। इस वाक्य से ये बात साबित हो गई कि मुझे याद करो तुम्हारे विकल विनाश होंगे। बाप अभी तो यहाँ का रहवासी है ना, माने जब तक इस सृष्टि पर सुप्रीम सोल बाप साकार तन में है तब तक याद करने का फायदा अच्छे अच्छे बच्चों को मिल सकता है। अगर नहीं है, साकार तन का पता ही नहीं है और साकार तन जैसे है ही नहीं सृष्टि पर, तो अच्छे अच्छे बच्चों की लिस्ट में वो बच्चे नहीं आ सकते। फिर किसको याद करेंगे, बिंदु को याद करेंगे, या तो उस मरे हुए तन में याद करेंगे जो है ही नहीं अभी मौजूद। तो बाबा अभी तो बाप यहाँ का रहवासी है ना, माना बाप यहाँ होना चाहिए, उस जीवित तन में परमात्मा बाप शिव को सुप्रीम सोल को याद करने से अच्छे अच्छे बच्चों की लिस्ट में आएंगे। वो हम सभी आत्माओं का बाप है, क्या कहा, जो अभी सृष्टि का रहवासी है वो सभी आत्माओं का बाप है। ऐसे नहीं क्रिश्चियन धर्म वाली आत्माओं का बाप नहीं है या मुस्लिम धर्म वाली आत्माओं का बाप नहीं है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ही बाप है, माना दूसरे धर्म की भी जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं उस बाप को साकार तन में याद कर रही होंगी, कर सकती हैं। हम सभी आत्माओं को सुप्रीम है ना, उनको ही याद करना है, क्या कहा, वो सुप्रीम है ना उनको ही याद करना है। इसको याद नहीं करना। उनको याद करना माने किस तरफ इशारा किया? नहीं, इसको याद नहीं करना हमारे ब्रह्मा को बाप के रूप में याद करने की बात नहीं है, उनको ही याद करना। उनको, उनको का मतलब क्या हुआ है? नहीं, ये तो अड़सठ में बोली गई ना वाणी। अरे तो उस समय तो था ही नहीं मौजूद। उनको ही याद करना माने सन 76 की तरफ इशारा किया कि सन 76 में जो बाप का पार्ट संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, सारे जगत का पिता जिसका कोई बाप नहीं होता, उसको रचने वाला कोई दुनिया में होता ही नहीं। शंकर के माँ बाप कभी सुने नहीं? एक ही देवता है जिसका कोई माँ बाप नहीं होता, वो सबका बाप होता है, जगत पिता कहा जाता है। तो बोला उनको ही याद करना है। याद की ही बड़ी भारी मेहनत है। क्या क्यों मेहनत है? पहले तो उस ज्ञान को सुने जिसमें बाप का परिचय हो, फिर उस ज्ञान को बुद्धि से समझे, बुद्धि में बात भी तो बैठे, वो पार्ट बजाने वाला बाप इस सृष्टि पर कौन है, फिर समझने के बाद फिर प्रैक्टिकल में उस ज्ञान पर चले, तभी तो वर्षा मिलेगा। मान लो किसी ने सुन लिया, समझ भी लिया, जैसे भीष्म पितामह ने क्या किया था, द्रोणाचार्य ने क्या किया, गीता ज्ञान सुन भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन प्रैक्टिकल में चले नहीं, तो उनको वो वर्षा नहीं मिल सकता। तो बोला उनको याद करना है। याद की ही मेहनत है। उस बाप को समझ करके फिर प्रैक्टिकल में उसका सहयोग करके ज्ञान में चलते हुए पहचान करके याद करना, ये बड़ी भारी मेहनत है। सबको याद इतनी मेहनत नहीं कर सकेंगे। मेहनत है, भल धंधे आदि में रहें, बाबा ये मना नहीं करते कि तुम अपनी दुकान बंद कर दो, बस यहीं आकर के योग भट्टी में बैठ जाओ। नहीं, अपना धंधा दौरी भी करो, बाल बच्चों का पोषण भी करो, पत्नी बाल बच्चों को देखो, लेकिन क्या करो, वो सब करते हुए भी मुझे याद करो। धंधेदार दौरी में भल रहो, सिर्फ इतना याद करो, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाप को हम ये मदद करते हैं, ये याद करो। सेंटर अथवा कॉलेज खोलते हैं तो उसमें बहुतों को कल्याण होगा। कोई बच्चे धन से सेंटर खोल देते हैं, कॉलेज खोल देते हैं, तो उन बच्चों का बहुत बहुत कल्याण होगा। इसको कहा जाता है तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करना। कैसी कैसी सेवा करनी है? तन से भी सेवा करनी है, मन से भी करनी है, और धन से भी करनी है, मनसा वाचा और कर्मणा भी करनी है। सब तरह की सेवा करने से उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। एक ही तरह से सेवा करेंगे तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, कैसे बाप को याद करते हो? किस तरह याद करते हो? बिंदी रूप में याद करते हो? दादा लेखराज जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनके तन में याद करते हो? या इस समय जो बाप मौजूद है, यहाँ का रहवासी है, उसमें याद करते हो? कैसे याद करते हो? तो तुम बच्चों को याद करना है एक बाप को। बाप पूछते हैं कैसे कैसे याद करते हो? बाप तो बेहद का मालिक है ना? क्या कहा? जिस बाप को याद करते हो वो हद का हिंदुस्तान का मालिक है, या यूपी का मालिक है, या सारी सृष्टि का मालिक कहा जाता है। कौन से बाप को याद करते हो? हैं? कौन से बाप को याद करते हो? हिंदुस्तान का मालिक है उसको याद करते हो? किस बाप को याद करते हो? है? सारे विश्व का पिता कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है कि हिटलर नेपोलियन को वर्षा नहीं मिलता है, किसको मिलता है? विश्व की बादशाही का। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, बिचारों ने बहुत हाथ पांव मारे, बहुत मारकाट मचाई, लेकिन बाहुबल से सारे विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। सिर्फ एक योगी ऐसा, एक ही योगी बच्चा ऐसा निकलता है जो योग बल से सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। वो विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाला बच्चा कौन है? वो बोला मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करना, तन मन धन से सर्विस करना। ऐसे बच्चे बाप को याद करते हैं जो बेहद का मालिक है। बेहद का मालिक माना किसी एक देश का मालिक नहीं होगा ना? सारे विश्व का मालिक होगा, ऐसे भी नहीं स्वर्ग का मालिक हो। चाहे नरक के रहने वाले हो, चाहे स्वर्ग के रहने वाले हो, सारे 500-600 करोड़ मनुष्य सबको कंट्रोल करने वाला होगा विश्व का मालिक। एक धर्म की आत्मा उसको नहीं मानेंगी, सब धर्मों की आत्मा उसको मानेंगी। उस बाप को याद करते हो? क्या कहा? बोला बाप तो बेहद का मालिक है ना। हद का मालिक किसे कहा जाता है? मान लो इस मंगल देवी का कोई चेयरमैन है, कोई है ना, तो कहाँ का मालिक हुआ? सिर्फ मंगल देवी का ही मालिक हुआ ना, सारे आसाम का तो नहीं हुआ। अच्छा, आसाम का मुख्य मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, तो आसाम का ही हुआ ना। अच्छा चलो, ऑल इंडिया का अटल बिहारी वाजपेयी, तो इंडिया का ही हुआ ना। सब देशों का मालिक हो, ऐसे बाप को याद करते हो? ऐसे मालिक को याद करते हो? पूछा, बाप को तो बेहद का मालिक है ना। जहां जहां भी जो बच्चे हैं, ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों को, कैसे अच्छे अच्छे बच्चे बताए? बिंदु को याद करने वाले बच्चे नहीं बताए, कैसे बच्चे बताए? जो साकार में उस निराकार को याद करते हैं, कैसे साकार में? जो शरीर छोड़ चुका उसमें नहीं। बाप तो यहाँ मौजूद है ना, क्या बोला अभी वाणी में? अभी तो यहाँ का रहवासी है ना। कौन? वो सुप्रीम सोल यहाँ का रहवासी भी होना चाहिए, ऐसे नहीं सही छोड़ देने वाला हो उस तन। और विश्व का मालिक भी होना चाहिए, बेहद का बाप भी होना चाहिए, बेहद का मालिक। उस बाप में उस निराकार सुप्रीम सोल को याद करते हो? पूछा, जहाँ जहाँ भी जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को बाप याद करते हैं। क्या कहा? ऐसे बच्चे, कैसे बच्चे हैं? जो इस सृष्टि पर आया हुआ वर्तमान में मौजूद बाप है, साकार तन में है, और सारे विश्व का मालिक कहा जाता है, कहा ही नहीं जाता, प्रैक्टिकल में होता भी है, उसको याद, उस तन में मेरे को याद करते हो? तुम बच्चों को तो याद करना है एक बाप को। क्या? किसको याद करना है? एक बाप को। एक बाप का मतलब ये नहीं एक बिंदी को याद करना है। अरे इनकी बिंदी, इनकी बिंदी, इनकी बिंदी, इनकी बिंदी सब है तो एक ही जैसी दिखाई पड़ने वाली बिंदी, कैसे पता चले हम कौन सी बिंदी को याद करते हैं? तो कोई तन में याद करना पड़े ना। तो बोला है याद करना है एक बाप को। एक बाप को याद करना है का मतलब ये नहीं कि बिंदी को। बिंदी बिंदी तो बहुत ढेर सारी है, कौन सी बिंदी को याद करते हैं? वो नहीं, कोई पार्टिकलर शरीर धारी चाहिए, तन धारी चाहिए। कौन सा तन धारी चाहिए? झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो कहते हैं कपड़े का झंडा। कपड़े का झंडा थोड़े विश्व विजय करके दिखलावे। कौन सा झंडा विश्व विजय करता है? कपड़ा माना शरीर रूपी वस्त्र। वो तीन शरीर रूपी वस्त्र दिखाए हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो यहाँ इस सृष्टि पर मौजूद होने चाहिए, शरीर छोड़ने वाले नहीं। उन तीन शरीर रूपी वस्त्रों का जो झंडा है वो बुलंद करना है संसार में। ये तीन मूर्तियां सारे विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाली हैं। उन तीन मूर्तियों में भी सबसे ऊंचा कपड़ा कौन सा है? तीन कपड़े होते हैं ना, नीचे हरा कपड़ा, बीच में सफेद कपड़ा, ऊपर लाल कपड़ा, केसरिया रंग कहा जाता है। तो सबसे ऊंचा कौन हुआ? देवदेव महादेव, ब्रह्मा देव, उससे ऊंचा विष्णु देव, और सबसे ऊंचा महादेव। तो किस एक को याद करना है? महादेव में जो कि शिव शंकर मिला के एक कर देते हैं, शिव ब्रह्मा को मिला के एक नहीं किया, शिव विष्णु को मिला के एक नहीं किया, एकाकार किसको कर दिया? शिव और शंकर को मिला। हैं तो दोनों आत्मे अलग अलग, शिव अलग है, शंकर अलग है, लेकिन दोनों को मिला के एक करके याद करते हैं। माना उस एक ने इतनी याद की गहरी कि उस एक में तल्लीन हो गया, लीन हो गई उसकी आत्मा। आत्मा सो क्या बन गया? आत्मा सो परमात्मा। उन्होंने कहा हाँ सब आत्मा सो परमात्मा, वो अकेला नहीं है। भक्ति मार्ग वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम सब आत्मा सो परमात्मा। लेकिन वास्तविकता क्या है? हम सब आत्मा है तो परमात्मा नहीं, वो एक ही ऐसी सुप्रीम सोल का पार्ट का रूप, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज धारण करने वाली आत्मा है, जो कि परमात्मा शिव से पूरा तादाद में स्थापन कर लेती है। लेकिन वो भी 5000 वर्ष के लिए शिव समान नहीं बन सकती। क्या? किंतु वो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है। कौन? शंकर। जो सबसे ऊंचा कपड़ा है झंडे में दिखाया गया, वो भी आत्मा है, परमात्मा हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए। संगम युग में ऐसी स्टेज उनकी बनती है जो सारा विश्व देखता है कि जो सुप्रीम सोल बात कर सकता है वो भी कर सकता है, ऐसी स्टेज धारण कर लेता है। तो बोला जहाँ जहाँ जो भी बच्चे हैं सभी को याद करते हैं, तुम बच्चों को तो याद करना है एक बाप को। तो जब याद करते हो तो क्या जहाँ रथ है वहाँ बाबा को समझ याद करते हो? ऐसे बाबा को याद करते हो क्या? कहा जब याद करते हो तो क्या जहाँ रथ है वहाँ बाबा को समझ ऐसे बाबा को याद करते हो? पूछा। करते हो? अरे बुद्धि पहचानोगी तभी तो याद करेंगे। वो रथ तो वहाँ क्या नाम जो क्या है शांति स्तंभ, उसमें दाव के है, उसे दफना दिया गया। क्या उसे शरीर छोड़ने वाले उस रथ को वहाँ शांति स्तंभ के अंदर याद करते हो क्या? नहीं, यहाँ तो बोला यहाँ मौजूद है बाप, उस बाप को याद करते हो। तो शरीर छोड़ देने वाले की बात नहीं की, जरूर यहाँ मौजूद है उसको याद करते हो। जब याद करते हो तो क्या जहाँ रथ है वहाँ बाबा को समझ ऐसे याद करते हो बाबा को? तो कैसे याद करेंगे? अगर पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा होगा तभी तो याद करेंगे, नहीं तो कैसे याद करेंगे? हाँ, आवाज। अच्छा समझो, बाबा बंबई में है तो क्या तुम्हारा बुद्धि योग बंबई में चला जाता है? कहाँ याद करना है? बाबा कभी बंबई में जाता है, कभी कलकत्ते में जाता है, कभी कानपुर में जाता है। पहले जाता था, पहले जो जाने वाला था वो तो गया। अब जो बाबा की बात बताई है कि उस रथ में याद करते हो, जो यहाँ का रहवासी है। कहाँ का रहवासी? यहाँ का। सूक्ष्म बदन का रहवासी नहीं बताया? उस अर्थ में याद करते हो जो यहाँ का रहवासी है। कहाँ का रहवासी? सूक्ष्म बदन का रहवासी या साकार तन का रहवासी? साकार तन का रहवासी। उसमें याद करते हो। जब याद करते हो तो क्या जहाँ रथ है वहाँ बाबा को ऐसे समझ याद करते हो? समझो बाबा बंबई में है तो क्या तुम्हारा बुद्धि योग बंबई में चला जाता है? बंबई में बाबा रथ पर विराजमान है, उनको याद करते हो? जो उनका स्थायी स्थान है उस बेहद के बाप के हम बने, जो बाप अभी नीचे आया हुआ है उसमें याद करना है। बंबई में जाता है, कलकत्ते में जाता है, कानपुर में, उसमें याद नहीं करना। कहाँ याद करना? जो उसका निवास स्थान स्थायी है वो तो मधुबनी होता है। कौन सा मधुबन है? अब तो माउंट आबू वाली बात आती है। माउंट आबू में तो मौजूद भी नहीं है, मौजूद है तो गुलजार दादी का तन मौजूद है। गुलजार दादी के तन में शिव की शोभा प्रवेशता साबित ही नहीं हो रही है। वो तो कुमारी कन्या है। शिव तो पति तन में आते हैं। शिव जब आते हैं तो वो खुद अपनी मुरली जो सुनाते हैं वो मुरली उनके कान भी सुनते हैं। गुलजार दादी दुकान सुनते ही नहीं, इससे शिव की प्रवेशता साबित ही नहीं होती। तो कहाँ याद करते हो? इसलिए अद्वैतवाणी बोला, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। मधुबन में ही बाप को आना है क्या? तो जरूर ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मिनी मधुबन बना लिए होंगे और वहाँ बाप दादा का आना जाना होता होगा। वहाँ याद करो, मधुबन में ही याद करना है बाप को, वो उनका स्थायी स्थान है। तो बोला, बाबा बंबई में है तो क्या तुम्हारा बुद्धि योग बंबई में चला जाता है? बंबई में बाबा रथ पर विराजमान है, उनको याद करते हो। जो उनका स्थायी स्थान है उस बेहद के बाप के हम बने हैं, जो बाप अभी नीचे आया हुआ है। जरूर आवाज करेंगे मन मना भव। क्या क्या आवाज करेंगे? मन मना भव संस्कृत के अक्षर हैं। मत मना भव, मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समाजा। मारे मेरे मन में जो संकल्प चल रहे हैं वो ही तेरे मन में भी वही संकल्प चले। ऐसी याद की स्टेज हो, मेरे मन के संकल्पों के विपरीत एक भी तेरा संकल्प भी न चले। वाचा चलने की तो बात बहुत दूर की हो गई, और कर्मेंद्रियों से उल्टा काम करने की बात बहुत दूर हो गई, जो बाबा नहीं चाहता है। क्या बोला? किस तरह याद करो? मन मन भाव का मतलब क्या हुआ? कि मैं जैसे संकल्प चलाता हूँ ऐसे तुम्हारे संकल्प मात्र भी चले। मैं जो वाणी बोलता हूँ वही वाणी तुम्हारे मुख से निकले। हमारे मुख से ब्राह्मणों की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो बाप की भाषा, जो बाप दादा की भाषा, वो हमारी भाषा। बाप दादा जो बात कभी नहीं बोलता वो हमको भी कभी नहीं बोली। बाप दादा ने कभी बोला? शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, ब्रह्मा पार्टी बोला है क्या? तो हम बच्चों को भी कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि विष्णु पार्टी, शंकर पार्टी, ब्रह्मा पार्टी नहीं। अरे शिव के तो ये तीन पहलौटी के बच्चे हैं, वो तो नई सृष्टि की स्थापना कर देते हैं, एक धर्म एक राज्य की, तीनों मिलकर के करते हैं, वो अलग कैसे हो सकते हैं? अगर वो भी अलग हो जाएंगे तो नई सृष्टि की स्थापना कभी नहीं हो सकती। इसलिए बोला जो बाप की भाषा सो हम बच्चों की भाषा, ऐसा मनमना भाव बनना है। तो बोला जरूर आवाज करेंगे मनमना भाव, तब तो पता पड़े ना कि बाबा हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। जहाँ रथ घूमता फिरता है वहाँ याद करते रहते हो या मधुबन में याद करते हो? कहाँ याद करते हो मेरे को, वो तो रथ यात्रा निकाल दी स्थूल, वो तो भक्तों की चीज है, वो तो भक्ति मार्ग में जगन्नाथ मंदिर में भी रथ यात्रा निकालते हैं। हमारी रथ यात्रा चैतन्य रथ की यात्रा है या जड़ रथ की यात्रा है? हमारा तो बाप आया हुआ है ना, तो कहता है मैं तुम बच्चों के साथ है, तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। साथ लेकर के जाऊंगा का मतलब क्या हुआ है? क्या मतलब हुआ? हाँ, जीवन मुक्ति, जीवन रहते रहते जिस स्टेज में मैं हूँ, साकार तन में आता हूँ तो मुझे दुख का अनुभव नहीं होता। जिस किसी के संपर्क संसर्ग में आता हूँ उसको सुख का ही अनुभव कराना है, अल्पकाल का सुख नहीं, सदाकाल का सुख का अनुभव कराना है, वाचा से कर्मणा से मनसा से। तो ऐसा तुम्हारी भी स्टेज बने। तो बोला है घूमता फिरता रथ है वहां याद करते हो या मधुबन में याद करते हो? कहां याद करते हो है? अब मधुबन में अगर याद करें तो वहां तो बाबा मौजूद ही नहीं है, कहां माउंट आबू में है मौजूद, तो शरीर छूट गया। यहाँ भी ये बोला है यहाँ आया हुआ हूँ वहां याद करो, अभी तो यहाँ का रहवासी है ना। मुरली क्या बोलती है? मुरली बोलती है जहाँ का रहवासी है अभी उस तन में मेरे को याद करो, तो जरूर कहीं रहवासी होगा ना। ये अज्ञान की बात हो सकती है कि बहुत से बच्चों को पता ना हो, जो षष्टि के छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे माने जिन्होंने कम जन्म लिए हैं वो बाद में समझेंगे, और जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं वो बड़े बच्चे हो गए, षष्ठ रूपी रंगमंच के बड़े बच्चे हुए वो पहले समझेंगे। किसको? बाप। तो घूमता फिरता है वहां याद करते हो या मधुबन में याद करते हो? बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं। कहाँ चलाते हैं? दूसरी जगह मुरली नहीं चलाते, इससे क्या साबित हुआ? जहां जहां उस साकार रथ की मुरली चलती है वो तुम बच्चों के लिए मधुबन एक दिन बन जाएगा। उस मधुबन में सब बच्चे पालना लेंगे। साधारण बात नहीं बोल ली। बोला बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं, दूसरी जगह कहीं मुरली नहीं चलाते। कैसे तुम याद करते हो, क्या करते हो? रथ तो जरूर याद आवेगा ना। जिस रथ से बाबा मुरली चलाते हैं तो वो रथ याद नहीं आएगा? टीचर के रूप में मुरली चलाते हैं, टीचर के रूप में प्रोज और पोएट्री का क्लैरिफिकेशन देते हैं, तो वो क्लैरिफिकेशन याद आएगा ना, तो जो जिस तरीके से दिया गया है। अभी तो वीडियो कैसेट भी चल पड़ी, वीडियो कैसेट में तो एक्ट भी दिखाई जाती है मुरली चलाते समय, तो एक्ट भी याद आती रहती है। तुम याद करते हो तो क्या करते हो? रथ तो जरूर याद आवेगा ना। जरूर शब्द क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया ये ऊपर बता दिया जो मेरे को साकार तन में याद करते हैं वो मेरे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, और जो साकार तन में याद नहीं करते सिर्फ बिंदु को याद करते हैं वो मेरे अच्छे अच्छे बच्चे नहीं है, दुष्ट और गंदे बच्चे हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, भारतवासियों को धोखा दे जाएंगे। क्या जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वो डायरेक्ट मेरे से वर्षा लेके जाएंगे, जो 83 जन्म लेंगे सतयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, वो मेरे बच्चे नहीं होंगे डायरेक्ट, 9 लाख की लिस्ट में नहीं आएंगे, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो 81 जन्म लेंगे सतयुग के 3 जन्म कम हो जाएंगे, वो और कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कन्वर्ट होने वाले मेरे बच्चे नहीं, कौन से बच्चे अच्छे अच्छे जो आज से अंत तक भारत का साथ निभाने वाले, बाप की श्रीमत पर पूरा चलने वाले, दूसरे धर्मगुरुओं की मत पर चलने वाले नहीं, दूसरे धर्मगुरुओं की मत पर यहाँ चलेंगे तो वहां कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बोला रथ तो जरूर याद आवेगा ना, परंतु रथ याद आते ही बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, ऐसे नहीं कि रथ को याद करते रह जाओ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी रथ सदा काल के लिए स्थायी नहीं है। कोई रथ स्थायी है क्या? कोई रथ इस दुनिया में सदा काल के लिए स्थायी नहीं है, तो रथ के साथ साथ क्या करो, किसको याद करो? मुझे भी याद करो। ये कौन कहने वाला है? ब्रह्मा कहने वाला है या सुप्रीम सोल कहने वाला है? वो सुप्रीम सोल रथ में कह रहा है कि उस रथ के साथ साथ मुझे भी याद करो। पांच सात अड़सठ की वाणी का दूसरा पेज। बाप भी याद करते हैं ना, फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है क्या? जब कहते हैं फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है, क्या क्या उसकी बिंदी आत्मा को याद करते हैं या उसके रथ को भी याद करते हैं? बच्चे लोग साथ साथ उस बिंदी आत्मा के साथ साथ रथ को भी याद करते हैं। फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है, भल कहाँ भी है वो उनको याद करना पड़ता है। क्या? चाहे बाप कहाँ भी हो, चाहे बच्चे कहाँ भी हो, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? पड़ता है क्या? तो कंपलसरी है क्या? जबरदस्ती है क्या? हैं? बोलो, पड़ता है का मतलब क्या? मैंने ये जरूरी है कि आत्मा के साथ साथ उसका तन भी याद आना चाहिए, नहीं तो याद करने से कोई फायदा नहीं। हमने सुप्रीम सोल को बिंदु रूप में याद किया, आप बिंदी बिंदी तो सारी आत्मा है,
कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी बिंदी है, तो हमने कौन सी बिंदी को याद किया? कैसे पता चले हमने सुप्रीम सोल को याद किया? इसलिए बोला बाप भी याद करते हैं, फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है, भल कहाँ भी है वो हम उनको याद करना पड़ता है। जैसे कहेंगे देहरादून में प्रेम बच्ची है, क्या किसका नाम लिया? देहरादून की इंचार्ज अभी भी है, देहरादून की प्रेम बच्ची है, बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। क्या देहरादून में प्रेम जो इंचार्ज है वहां की, अभी तो हरिद्वार में बड़ा सेंटर उन्होंने खोल लिया है, तो उनके लिए बोला प्रेम बच्ची है बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। याद तो जरूर शरीर से ही करते होंगे ना, प्रेम बच्ची को याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? शरीर से ही याद करेंगे ना।